संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। प्रकरण ये चल रहा है कि समय सार की मूल विषय वस्तु क्या है, समय सार में आखिर समझाया क्या है। तो जैसा कि प्रतिज्ञा वाक्य में कहा गया था कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा। एकत्व माने अपने में अखंड और विभक्त माने पर पदार्थों से भिन्न। और पर पदार्थ माने क्या? अपने आत्मा को छोड़कर जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जिनमें पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये पांच अजीब द्रव्य हैं, वो तो मैं हूं ही नहीं। अपने आत्मा को छोड़कर बाकी के जो जीव द्रव्य हैं वो भी मैं नहीं हूं। और इन सब के लक्ष्य से जो आत्मा में मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम होते हैं, इन पर पदार्थों के लक्ष्य से वे यद्यपि आत्मा में उत्पन्न होते हैं, फिर भी वे आत्मा नहीं है। इतनी बात अपन कल के व्याख्यान में कर चुके हैं, जिसमें ये कहा था कि व्यवहार नए के जो चार भेद होते हैं ना, कौन कौन से चार भेद? पहला उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, दूसरा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए, तीसरा उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, और चौथा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। तो ये जो पदार्थ हैं, इनमें से जो एकदम हमसे पृथक हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब, इनको अपना कहने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार नए है। निश्चय नए कहता है कि ये अपने नहीं है, क्योंकि ना जी हमारे साथ जन्म से थे और न मरने समय तक हमारा साथ देने वाले हैं। ये तो बीच में आने वाले मेहमान हैं, और मेहमानों को अपने घर वालों में शामिल नहीं किया जाता है। राशन कार्ड में मेहमानों का नाम नहीं लिखा जाता है। तो ये तो हमारे इस मनुष्य भव में मेहमान जैसे हैं, इसलिए निश्चय नए कहता है कि ये हमारे नहीं है। फिर दूसरा व्यवहार नए कौन सा था? उसका नाम था अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए, जिसकी दृष्टि से शरीर और आत्मा को एक कहा जाता है। शरीर को ही आत्मा माना जाता है, शरीर को आत्मा का कहा जाता है, शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा को कहा जाता है। ऐसा जो दूसरा व्यवहार नए है, वो भी समय सार कहता है, निश्चय नए कहता है कि वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि इसका साथ तो जन्म से लेके मरण तक का है, लेकिन मैं जन्म से लेके मरण तक का ही नहीं हूं। मैं जन्म के पहले भी था और मरने के बाद भी रहूंगा, इससे भी मैं एक पृथक तत्व हूं। ऐसा कहने वाला जो समय सार का निश्चय न है, वो दूसरे प्रकार के व्यवहार नय का निषेध कर देता है। अब आता है तीसरे नय का नंबर, कि पर के लक्ष्य से जो आत्मा में रागादि भाव पैदा होते हैं, यद्यपि वे आत्मा में ही पैदा हुए हैं, आत्मा की ही पर्याय हैं, फिर भी वे आत्मा के लिए सुखदायक नहीं है, दुखदायक हैं। वे आत्मा के स्वभाव नहीं है, विभाव हैं, वे आत्मा के मैल हैं। जैसे जल में उत्पन्न होने वाली काई यद्यपि जल में पैदा होती है लेकिन जल का मैल है, ऐसे ये रागादि भाव भी आत्मा के मैल हैं, आत्मा के घातक हैं, इसलिए ये आत्मा नहीं है। और इन्हें जो आत्मा कहता है उस नय का नाम है उपचरित सद्भूत व्यवहार में है। उपचरित तो इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए दुखदाई है, इसलिए दूर के हैं। सद्भूत इसलिए कि हमारी आत्मा में पैदा हुए हैं। अब इस तरह से इन तीन का निषेध तो अपन कल के व्याख्यान में कर चुके हैं। तीन प्रकार के व्यवहार का निषेध तो कह चुके हैं। अब एक चौथा व्यवहार न है, उसका काम क्या है कि अभेद वस्तु में भेद डालना। आत्मा में अनंत गुण हैं, ये बात सत्य है। असंख्यात प्रदेशी है, ये बात भी सत्य है। लेकिन वे अनंत गुण अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा ज्ञान यहां रह जाए और सुख चला जाए अमेरिका में। वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसी उनके अंदर जो एकता है, ऐसे ही असंख्य प्रदेशों में जो एकता है वो वास्तविक है, और आत्मा में जो अनंत गुण हैं ये भी वास्तविक हैं। लेकिन इन गुणों का जो लक्ष्य रहे कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, तो अपने ज्ञान में विकल्प की तरंग उठती है। और जब तक ज्ञान में विकल्प की तरंग उठती रहेगी तो आत्मा का अनुभव नहीं होता है। इसलिए चौथा नय, जिसे हम अनुपचय सद्भूत व्यवहार नय है, उससे कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, अनंत असंख्य प्रदेश है। लेकिन जब तक ऐसा विकल्प रहेगा तब तक वो आत्मा के अनुभव का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए इसको भी अभूतार्थ कहते हैं। इस प्रकार इस चार प्रकार का जो व्यवहार नय है, जो आत्मा का स्वरूप बताता है, वो वास्तविक नहीं है, ऐसा बताने वाला ग्रंथ आदिराज समय सार है। इसकी 27वीं गाथा में लिखा है कि व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हव दिखलु एको नदु निश्चयेण जीवो देहो भी कदापि एकठो। कि व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह एक ही है, किंतु निश्चय ऐसे जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। ये असद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण है। वो दो प्रकार का था ना, उसमें दूसरे प्रकार का इन्होंने नंबर उदाहरण में लिया। और सातवीं गाथा में इसी समय सारकी ने ये लिखा है व्यवहारेण बदस्यदि जीवस्य चरित्र दंशनम नाणम न विनाणम न चरित्रम न दंशनम जान गो शुद्धो। व्यवहार में कहता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, लेकिन निश्चय ऐसे विचार करें न तो आत्मा ज्ञान है, न दर्शन है, न चरित्र है। इस तरह दोनों गाथाओं की ऊपर की पंक्ति में व्यवहार नय का प्रतिपादन है और नीचे की पंक्ति में निश्चय नय का प्रतिपादन है। और न केवल प्रतिपादन है बल्कि वो निश्चय नय का प्रतिपादन व्यवहार नय के निषेध रूप है। ऊपर की पंक्ति में कहते हैं कि व्यवहार नय कहता है कि देह जीव एक है, यह सद्भूत व्यवहार नय की बात है। और नीचे की पंक्ति में कहते हैं कि निश्चय नय से ये कदापि एक नहीं हो सकते। ऐसे ही ऊपर की पंक्ति में कहते हैं कि व्यवहार नय कहता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। नीचे की पंक्ति में उसका निषेध करते हुए कहते हैं कि ना आत्मा में ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। ना आत्मा ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। इस तरह निश्चय और व्यवहार नय में निषेधक निषेध संबंध है। व्यवहार निषेध है और निश्चय निषेधक है। इस बात का ध्यान रखना कि जब पहले व्यवहार बोलें और निश्चय बाद में बोलें तो संबंध का नाम बोलना निषेध निषेधक। पहले निश्चय बोलें और बाद में व्यवहार बोलें तो उसका नाम रखना निषेधक निषेध। कहने का आशय है कि व्यवहार निषेध करने योग्य है और निश्चय नए उसका निषेध करने वाला। तो ये समय सार में उस परम शुद्ध निश्चय नए की बात कही है कि जिस नए से मैं ना स्त्री पुत्र मकान जायदाद आत्मा है, ना देह आत्मा है, ना राग आत्मा है, ना क्रोधादि भाव आत्मा है, और यहां तक कि आत्मा के अंदर विद्यमान ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो गुण हैं उनका भेद यानी विकल्प भी आत्मा नहीं है। तो इसके पार जो शुद्धात्मा है वो समय सार का प्रतिपाद्य है। वो आत्मा हमारे ख्याल में आए और वो आत्मा हमारे को ऐसा लगे कि ये मैं हूं, ऐसी दृढ़ प्रतीति में अंदर में जागे और उसी के ध्यान में हम मगन हो जाएं, इसका नाम है धर्म। जब तक ऐसा धर्म हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुआ तब तक बाहर में हम कितना ही क्रियाकांड करें, कितने ही व्रत उपवास करें, कितना ही दयादान की प्रवृत्ति करें, कितने ही तीर्थ यात्रा करें, शरीर को सुखा लें, तो भी जैन दर्शन के अनुसार रंज मात्र भी धर्म होने वाला नहीं है। इसलिए वस्तु स्थिति यह है कि समय सार ही वो एकमात्र ऐसा शास्त्र है कि जिसमें सच्चे मोक्ष मार्ग का, सुखी होने का उपाय बताया गया है। जब तक समय सार में बताए गए शुद्धात्मा का स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं आएगा तब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए तो उसकी छठवीं गाथा में, जब पांचवीं गाथा में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एकत्र विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा, तो छठवीं गाथा में तत्काल कहते हैं कि न भी हो दि पमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणंती शुद्धम, कि वह जो गायक भाव है जिसे हमने पांचवीं गाथा में एकत्व विभक्त कहा था और छठवीं गाथा में जिसे हम गायक भाव कह रहे हैं, वो गायक भाव ना तो प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। जैन दर्शन में 14 गुणस्थानों की चर्चा आती है। ये आत्मा के विकास की एक सीढ़ियां हैं। ये आत्मा, संसारी आत्मा पहले गुणस्थान में माने मिथ्यात्व की दशा में है, फिर यहां से निकलकर वो सम्यक दृष्टि बनता है और सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा बनता है, साधु संत बनता है और एक दिन केवली परमात्मा बन के सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। तो उसका जो एक क्रमिक विकास होता है उसमें ये 14 गुणस्थान कहलाते हैं, जिसमें छठवें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त और सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त। इसके लिखने वाले जो आचार्य कुंद देव है ना, समय सार के कर्ता, वे स्वयं ही इस छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले संत थे। तो वो स्वयं कहते हैं कि ना मैं प्रमत्त हूं ना मैं अप्रमत्त हूं, यानी मैं ना तो छठवें गुणस्थान वाला हूं ना मैं सातवें गुणस्थान वाला हूं, मैं तो गुणस्थान वाला ही नहीं हूं। ये जो 29 प्रकार के भावों की चर्चा की थी ना कि पर भाव 29 प्रकार के होते हैं, तो उन 29 प्रकार के भावों में पहला भाव है वर्ण। वर्ण माने कलर, कलर। और अंतिम भाव है गुणस्थान, वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत ये 29 भाव हैं। तो देखो ये 29वां भाव पकड़कर समय सार की छठवीं गाथा में मानो संपूर्ण समय सार भर दिया है। ये 29वां भाव भी मैं नहीं हूं उसका अर्थ है कि पहले की 28 तो मैं हुई नहीं। और प्रमत्त गुणस्थान है छठवां, अप्रमत्त है सातवां। तो आचार्य जैसेन कहते हैं कि अकेला छठवां ही नहीं लेना, पहले से छठवां तक लेना, और अप्रमत्त कहते हैं तो सातवें से 14वें तक लेना। इस तरह इसका अर्थ है कि मैं पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक कुछ भी नहीं हूं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं, आज के 16 क्लासें हैं, 14 क्लासें हैं, जो भी हैं, फिर आप कहेंगे आप कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं? कि मैं कोई क्लास मिलास का नहीं हूं, मैं तो विद्यार्थी हूं, मुझे तो विद्या का अर्जन करना है, मुझे तो ज्ञान चाहिए। ये कह सकते हैं जो विद्यार्थी यहां बैठे हैं ना, कि मैं शास्त्री फर्स्ट ईयर का हूं, शास्त्री सेकंड ईयर का हूं, उपाध्याय का हूं। क्यों मोहनलाल जी, आप कौन सी क्लास के हैं? ये बुजुर्ग लोग क्या कहेंगे? ये 60 वर्ष के मोहनलाल जी कैसे कहेंगे मैं कौन सी क्लास के हैं? कि तो आप क्यों बैठे हैं? हां कि साहब, मैं तो आत्मा समझने के लिए यहां बैठा हूं, मैं तो समय सार का विद्यार्थी हूं, किसी क्लास का विद्यार्थी नहीं हूं। तो ऐसे ही तो आचार्य कह रहे हैं ना कि मैं किसी गुणस्थान का नहीं हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं तो गुणस्थान से पार हूं। ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि कोई ज्ञानार्थी हो, यानी विद्यार्थी हो, विद्या का अर्थी तो हो लेकिन किसी क्लास का नहीं हो? ऐसा हो सकता है ना? तो क्या आत्मा किसी गुणस्थान में ही होगा? तो गुणस्थान के बिना आत्मा संभव नहीं है। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि ना तो मैं किसी गुणस्थान का नहीं हूं। तो इस तरह से वो सारी पर्यायों का निषेध करते हैं। जो अपने आत्मा को पहचानना है ना, तो इसके पहचानने की विधि, ये सारी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में से हमें आत्मा खोजना है। इस सारे नयों का वर्णन समय सार में क्यों किया है? समय सार के सामने एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? जैसे आज किसी आदमी को हीरा चाहिए, उसकी लड़की की शादी है और अपने जमाई को उसे हीरे की अंगूठी देना है। अभी कोई आदमी उससे कहे कि हीरा कहां मिलेगा, तो कोई आदमी यदि उसे जवाब दे कि हीरा पृथ्वी में मिलेगा, तो बात तो सच्ची है ना, क्योंकि आकाश में से तो टपकने वाला है नहीं, हीरे की जो खदानें हैं वो पृथ्वी के भीतर ही है ना। ये बात सत्य होने पर भी उसे संतोष प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि वो एक हीरे की अंगूठी के लिए सारी पृथ्वी को खोदे, ये संभव है क्या? कितना कठिन काम है। ऐसे ही कोई आदमी पूछे कि मुझे अनुभव करने के लिए, सम्मा दर्शन की प्राप्ति करने के लिए, हमें सम्मा दर्शन की प्राप्ति करना है, समझ लो हमारी बेटी की शादी है, ये भी कोई साधारण काम नहीं है। जैसे बेटी की शादी एक बहुत बड़ा काम है, निबट जाए तो आधा मोक्ष हो गया लगता है, सम्यक दर्शन होते भी आधा मोक्ष हो गया समझ लो। तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आत्मा जानना है, और पूछें कि आत्मा कहां मिलेगा, और कोई जवाब दे के लोकाकाश में, तो उत्तर कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि जीव अलोकाकाश में तो है ही नहीं, अलोकाकाश में तो अकेला आकाश ही आकाश है ना। जीवों की सत्ता तो लोकाकाश के भीतर भीतर ही है ना। ये बात सत्य होने पर भी जिस आत्मा के दर्शन करके हमें सम्मा दर्शन की प्राप्ति करनी है, वो आत्मा हमें उपलब्ध नहीं हुआ, तो क्या लाभ हुआ इस कथन का? कि ये कथन बेकार है कि नहीं? ये कथन बेकार तो नहीं है, क्योंकि जिनवाणी में इसका कथन है। बेकार इसलिए नहीं है कि ये पृथ्वी में ही हीरा मिलेगा, इसने कम से कम इतना तो बता दिया कि हीरा खरीदने के लिए मंगल ग्रह पे नहीं जाना पड़ेगा, चंद्रमा पे नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्गों और नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, इस मध्यलोक में जो पृथ्वी है इसमें ही मिलेगा। उसने भी कुछ ना कुछ काम तो किया ही है। अभी हम उस हीरे को खोजते तो सारे ब्रह्मांड में खोजने की कोशिश करते, स्वर्ग नरक में और सिद्ध सभा में भी, जैन धर्म के हिसाब से अथवा आज के विज्ञान के हिसाब से चंद्रमा में, मंगल ग्रह में, बृहस्पति ग्रह में, दूसरे ग्रह में जाते क्यों? इतना तो हो गया ना, वहां जाने की जरूरत नहीं है। इतने भी काम तो किया है, इसलिए इसको एकदम बेकार तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसको जिनवाणी में जगह मिली है। और चूंकि पूरा काम नहीं किया इसलिए कहते भाई साहब इससे काम नहीं चलेगा, ये असत्यार्थ है, इसे छोड़ो। फिर और आगे बढ़ेंगे, इसे छोड़ें तो कहां जाएंगे, कहां मिलेगा हीरा? तो कहा पन्ने की खदान में मिलेगा। पन्ना स्टेट है ना अपने यहां पर, ये गांव है, नगर है, वहां हीरे की खदानें हैं। इसने बहुत बड़ा काम किया कि सारी पृथ्वी से हमारी दृष्टि हटाकर एक पृथ्वी के एक दो किलोमीटर के एरिए के भीतर केंद्रित कर दी, जहां वो हीरे की खदानें हैं। तो बहुत बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन फिर भी 10 तारीख को हमारी बेटी की शादी है, वो पन्ने की खदानें खुदवाकर हीरा निकालकर अंगूठी बनाकर भेंट नहीं की जा सकती है उस तारीख में, क्यों? ऐसे ही जब पूछा कि आत्मा कहां है, तो अभी जो सारे लोकाकाश में बताया था उपचय तो सदगुरु व्यवहार ने है ना, तो उसने कहा कि देह देवल में विराजमान है। ये कौन सा नय आ गया? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, जो देह और आत्मा को एक कहता है कि वो आत्मा देह में है, देह है। तो इसने भी बहुत बड़ा काम किया, कहां लोकाकाश जिसमें 6 ही द्रव्य हैं, वहां से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा अपने देह तक ले आया कि यहीं खोजो, इसके बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। घर के बाहर जाने की बात तो बहुत दूर है, इस देह के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? किया ना इसने कुछ काम, है ना इसकी कुछ उपयोगिता? तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का वजन कुछ ज्यादा है, क्योंकि उसने आत्मा के हमें बहुत कुछ नजदीक पहुंचा दिया है। लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए यहां अटकने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देह में आत्मा है पर देह आत्मा नहीं है। पन्ना में हीरा की खदान है, लेकिन हर पन्ना का ईंट पत्थर हीरा नहीं है। तो क्या करें कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या बढ़ें कि हीरा कहां है? तो वो जो खदान से निकला हुआ हीरा का एक पत्थर होता है टुकड़ा, आपने कभी देखा केवले जैसा होता है? आप तो उसे समझे ही नहीं गए कोई कीमती है। साधारण आदमी तो उसकी कीमत को समझ ही नहीं सकता है, ऐसी हालत में वो होता है कि ये दिखाएंगे ये है हीरा, कह रेंदो रेंदो हमें नहीं चाहिए हीरे का, हमारा तो पत्थर का ही बढ़िया है, बिना हीरे के काम चला लेंगे, हम तो सोने की अंगूठी बना लेंगे। वो हीरा को यदि मूल रूप में आप देखें, जो खदान से निकलता है, वो बहुत बुरी हालत में होता है। ऐसे ही कहा कि उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से, जिसमें राग है, देश है, मोह है, क्रोध है, जो गुस्सा करता है, खाता पीता दौड़ता है, इच्छाएं हैं, उसे आत्मा कहते हैं। ये तो बहुत मेला कुचेला है, आत्मा ऐसा होता होगा? क्यों? जैसा वो मेला कुचेला हीरा है ना। इसने भी कुछ काम तो किया, क्या काम किया? कि पन्ने की खदान से हमारे एक कटोरे में रखे हुए इतने से टुकड़े में कि ये है हीरा, अब वो 2-4 किलोमीटर के एरिया को तो नहीं खोजना पड़ेगा, वहां से इतना काम तो किया ना। तो ये जो देह में कहा था कि देह में देवल में विराजमान है, लेकिन जो देह में रूप रस गंध स्पर्श वाला हिस्सा है, ये काला गोरा हिस्सा है, वो मैं नहीं हूं, जिसमें से ये क्रोध मान माया लोभ आ रहा है वो मैं हूं, एक क्रोध शरीर में से नहीं आ रहा है, अंदर जो आत्मा है उसमें से आ रहा है। इसने भी कुछ काम तो किया, देह पे से दृष्टि हटा दी, पन्ना की खदान से दृष्टि हटा दी, उस पत्थर तक दृष्टि आ गई, लेकिन भाई साहब अभी भी काम नहीं हुआ, क्योंकि उस हीरे को वैसे ही का वैसा अंगूठी में जड़ा करके रख दें तो कोई हाथ में पहनेगा नहीं उसे, वो शोभा नहीं बढ़ाएगा। ऐसे ये राग देश वाले आत्मा का ध्यान करें तो धर्म नहीं होगा, सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये नए भी असत्यार्थ है, लेकिन इसने भी कुछ ना कुछ काम तो किया है, उपयोगी तो है, लेकिन पूर्ण सत्य को इसने हमें प्राप्त नहीं कराया है। तो आगे बढ़ो। तो क्या है कि ये जो आपको काला कलूटा दिख रहा है ना, इसी के अंदर सफेदी भी है, चमक भी है। वो तुझे भले ही दिखाई नहीं देती है। जिस चारित्र गुण की विकारी पर्याय क्रोध है, उसी चारित्र गुण, वो चारित्र गुण क्षमा का भंडार है, वो क्रोध का भंडार नहीं है। वो क्षमा गुण है, उसका गुण, उसका स्वभाव क्षमा है, क्रोध उसका स्वभाव नहीं है। जो काला कलूटा हीरा दिखता है, वो काला कलूटा नहीं है, गोरा भूरा है, एकदम सफेद चमकदार है। क्यों? मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्य दृष्टि होगा। जिसमें ये मिथ्या दर्शन है, उसी में एक श्रद्धा नाम का गुण है कि जिसमें से सम्यक दर्शन की पर्याय निकलेगी। जिसमें मिथ्या दर्शन की पर्याय नहीं है, उसमें श्रद्धा नाम का गुण ही नहीं है। इस पत्थर में, इस रूमाल में, इस घड़ी में क्यों मिथ्या दर्शन नहीं है? ये मिथ्या दृष्टि नहीं है ना घड़ी अन्ना जी? ये मिथ्या दृष्टि नहीं है तो यह सम्य दृष्टि भी नहीं होगी। जो मिथ्या दृष्टि है आज, कल वो ही सम्य दृष्टि होगा। जो क्रोधी है वो ही क्षमावान होगा। जिसमें क्रोध नहीं है वो क्षमा भी बांध भी नहीं होगा। एक गुण है, दोष है, तो दोष को आत्मा नहीं मानकर दोष के पीछे जो गुण छिपा है, क्योंकि दोष तो पर्याय है ना, वो किसी गुण की पर्याय है। वो आत्मा तो उस गुण स्वरूप है, ऐसा जो कहन करने वाला है वो कौन सा न है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न। देखो भाई, जो व्यक्ति उस काले कलूटे पत्थरों में अंदर चमकदार हीरा देख लेता है, हीरे में कमाई वो ही करता है। जो चमकने वाले हीरे को बाजार में खरीदने जाओ तो आपको उसकी जो असली कीमत है उसी भाव मिलेगा, इसे एक नया पैसे में नहीं मिलेगा। इस जो सर्राफ बैठते हैं ना बाजार में, काय में कमाते हैं, शुद्ध सोने में। शुद्ध सोना खरीदें और चाहे बेचें तो बाजार में उसका स्टैंडर्ड भाव रहता है। वो 10 तेलों का एक बिस्कुट होता है ना, तो उसका रेट नक्की है। मान लो, मतलब आज 5,000 रुपये तोला है, जो भी भाव है उसका, 5,000 रुपये का 10 ग्राम, तो 5,000 रुपये में 10 ग्राम खरीद लो और 5 रुपये कम देकर बेच दो। उसमें कोई सवाय दूने नहीं होते हैं। लेकिन जो किसान बाजार से अपने गहने बेचने आता है, वो शराब जो जो जिसमें मेल मेल भरा हुआ है और उसे कस के देखता है ना, उसमें कमाई होती है। क्योंकि वो जानता है 12 आना शुद्ध है, 4 आना खोट है। समझ में है ना? तो जो इस मेले कुचेले आत्मा में, ये राग देश आत्मा में, राग देश नहीं देख के उसके अंदर क्षमा क्रोध क्षमा आदि भावों को देख लेता है, स्वभाव को देख लेता है, वो भगवान बनता है। लेकिन वो वही है ना। इसलिए कहते हैं जो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वो आत्मा है। जो जाने सो आत्मा, जो देख है सो आत्मा, जो क्रोध करे वो आत्मा नहीं। इसका नाम क्या है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। लेकिन भाई साहब, जब तक आप ये कहते रहोगे जो देखे सो आत्मा, जो जाने सो आत्मा, तो ये विकल्पों की तरंग उठती रहेगी, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। जब सफेद सो चमकदार सो हीरा, ये सफेद चमकदार जो हीरा कहते रहोगे, तब तक हीरे की उपलब्धि। इसलिए कहते हैं ये भी असद्भूत है, ये भी असत्यार्थ है, ये भी पूर्ण सत्य को हमें नहीं बताता है। इस तरह ये चारों नयों का प्रतिपादन करके, ये जैसे कि पृथ्वी में हीरा था, वहां से लेकर हमें बंबई की किसी जवेरी की दुकान पर पहुंचा देता है और हमें वहां हीरा मिल जाता है। ऐसे ही ये व्यवहार नए जो लोकाकाश में आत्मा बताता था अपने तरकीब से आगे बढ़ाता बढ़ाता हमें जो असली त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है निश्चय नय का विषय भूत जो समय सार का मूल प्रतिपाद्य है उस आत्मा तक पहुंचा देता है। और वो आत्मा वो मैं हूं ऐसी प्रतीति जब हो जाती है अनुभूति पूर्वक तो उसका नाम होता है सम्यक। इसलिए समय सार सम्यक दर्शन की प्राप्ति का शास्त्र है, ये सच्चे मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति का शास्त्र है। इसलिए समय सार की आठवीं नौवीं दसवीं और ग्यारहवीं बारहवीं गाथा तक इन नयों की चर्चा की। एक प्रश्न वहां खड़ा किया कि आप बार बार कहते हो कि व्यवहार नए अभूतार्थ है, व्यवहार नए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, इस सच्ची बात नहीं कहता है, ये उपचरित बात कहता है, ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहता है जो कभी अपने नहीं हो सकते हैं, जो देह को अपना कहता है जबकि छडाला में लिखा है कि देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है ना, कि देह और जीव को एक माने वो बहिरात्मा है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, और ये उसी को आत्मा कहता है। जब ये ऐसा असत्यार्थ है, ऐसी गलत बात कहता है, तो जिन वाणी में इसे स्थान ही क्यों दिया गया, ऐसा प्रश्न समय सार में खुद उठाया है। और उसका जवाब इस समय सार की आठवीं गाथा में गीजवाजी बाधिकार है। उसी प्रकार इस अज्ञानी आत्मा को सीधे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझाना संभव नहीं है। देखो गाथा है ऐसी है, जहन विशक्य मणज्जो अणज्ज भाषम बिना दुगाहे दुम तह व्यवहारेण बिना परमत्व मदेशण मशक्कम। के जिस प्रकार अनार्य भाषा के बिना अनार्य को समझाना संभव नहीं है, अनारी और मिलेच्छ को बोलते हैं, ऐसा समझ लीजिए ना, हम किसी को आर्य अनार्य के भेद में न डालकर जो आदमी संस्कृत भाषा नहीं समझता है, हिंदी भाषा नहीं समझता है, और मान लो अकेली अंग्रेजी भाषा समझता है, अब वो कहे कि हमें आत्मा समझना है और हम उसे संस्कृत और प्राकृत में भगवान आत्मा समझाते रहे तो उसकी समझ में कुछ आएगा नहीं आएगा। इसमें ऐसा टीका में ऐसा उदाहरण दिया है कि कोई मिलेच्छ था और वो आचार्यों की भाषा नहीं समझता था, तो उसने आकर उन्हें साधु संत समझ के उन्हें नमस्कार किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया स्वस्ति। इस स्वस्ति शब्द जो है ये जैन दर्शन में आशीर्वाद का द्योतक शब्द है। स्वस्ति का अर्थ होता है तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। स्व माने अपना भगवान आत्मा, उसकी अस्थि माने उसका अस्तित्व, तुम्हारे भगवान आत्मा का अस्तित्व तुम्हारे ख्याल में आ जाए उसका नाम है स्वस्ति, और उसी में आत्मा का कल्याण है। इसलिए वो कहते स्वस्ति माने तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, अविनाशी माने ऐसा कल्याण हो कि फिर द्वारा कल्याण करने की जरूरत ही नहीं पड़े। वो बेचारा कुछ समझता नहीं था कि क्या कहा इनने, क्या कहा क्या कहा, लेकिन इतना ख्याल में उसके आया था कि एक कोई बड़े महात्मा हैं और कोई बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, उनकी मुख मुद्रा देखकर, उनकी आंखों में वात्सल्य भाव देखकर, उनका ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ की मुद्रा देखकर उसको ये प्रतीति तो हो गई कि मेरा बुरा नहीं चाहते हैं, भला चाहते हैं, और कोई बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आया। तो मेहरे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर आचार्य की तरफ देख रहा है, ऐसा लिखा है इसमें अमृतचंदाचार्य की टीका में। ऐसा कहकर आत्मा समझने वाला शिष्य कैसा होना चाहिए, उसकी कैसी पात्रता होना चाहिए, प्रश्न हमारे मुंह से निकले तो कैसे निकलना चाहिए, इस बात को उन्होंने बता दिया। ऐसे पात्र शिष्य की ही समझ में बात समझाने से आती है। जो ऐसे प्रश्न करता है कि हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहा हो, आप ऐसा कैसे करें, आपको ये बताना ही पड़ेगा, जैसे हम उसके बाप के नौकर को क्यों बताना पड़ेगा। बहुत विनय पूर्वक कहे कि ये बात मेरी ख्याल में नहीं आई, यदि आपको तकलीफ नहीं हो तो मुझे एक दफे समझा दें, तो उन्हें समझाने का भाव भी आएगा। मैं एक बात कहता हूं बहुत मरम की है कि विद्या प्राप्त करने का उपाय शास्त्रों में विनय को कहा है। देखो, किसी सेठ की तिजोरी का माल लेना हो तो उसकी छाती पर बंदूक रखकर लिया जा सकता है भाई साहब? क्यों? खोल तिजोरी की ताबी उठा, खोल अपने हाथ से निकाल के दे, और बंदूक उसकी छाती पर रखे दिखाते रहो तो सब निकाल के दे देगा, मिल जाएगा तुम्हें माल। लेकिन यदि किसी से कुछ सीखना है, किसी से ज्ञान की प्राप्ति करनी है, गुरुओं से यदि आत्मा समझना है, तो उनकी छाती पर बंदूक रख के आत्मा नहीं समझा जा सकता है। ज्ञान की तिजोरी छाती पर बंदूक रखने से नहीं खुलवाई जा सकती है। क्यों? कि पहले तो तुम उसकी छाती पर बंदूक रखोगे तो जो कुछ भी उसे आता होगा वो भी भूल जाएगा। वो समझाने का भाव ही गायब हो जाएगा, वो तो भयाक्रांत हो जाएगा, वो समझाएगा कैसे? ये समझने और समझाने का काम तो अंदर के उल्लास का काम है, अंदर से उल्लास आए तो ही हम समझा सकते हैं। गुरु के ज्ञान की तिजोरी उनकी छाती पर बंदूक तान करके नहीं खुलवाई जा सकती है। तो कैसे खुलवाई जा सकती है? कि विनय से, अपने विनम्र शब्दों के माध्यम से हम उनके हृदय को प्रफुल्लित कर दें, उन्हें ऐसी प्रतीति कर दें कि भाई इसे समझाना चाहिए, दया भाव उत्पन्न कर दें, तो ही समझाया जा सकता है। ये बात को इस उदाहरण से आचार्य देव ने यहां कह दिया कि उसके हृदय में ऐसा विरोध भाव नहीं है, क्या बकते हैं गुटर गुटर, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता है, हमारी भाषा में क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसा विरोध भाव नहीं आया। बल्कि कोई कहते तो अच्छी बात है, मैं ही अभागा हूं जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मेरा भला ही चाहते हैं, ऐसा समझकर मेढे की भांति टकटकी लगाकर देखता है। तो उसमें लिखा कि बोई आचार्य कदाचित उसकी भाषा समझते हो तो वे करुणा से पिघल करके वे उसी की भाषा में समझाने लग जाएंगे। और लिखा कदाचित वे आचार्य नहीं समझते हो तो उनके पास दूसरे आचार्य बैठे हो और वे समझते हो दोनों की भाषा को तो वे समझा देंगे, तो उसकी समझ में बात आ जाएगी। तो ऐसे ही निश्चय माने आत्मा क्या, कि ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा। अब ऐसा कहा तो शिष्य की समझ में नहीं आया, तो अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक मेढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखे, गुरु से विनय पूर्वक पूछे, तो यदि वो उसकी भाषा में जानते हो, यानी व्यवहार जानते ही हैं आचार्य, यदि व्यवहार में आकर के वे उसे समझाएं कि जो जाने सो आत्मा, जो देखे सो आत्मा, कि महाराज समझ में नहीं आई कि जिसमें गुस्सा हो, क्रोध, मान, माया, लोभ हो, वो आत्मा अभी भी समझ में नहीं आई कि जो देह देवल में विराजमान है वो आत्मा, कि अभी भी समझ में नहीं आई कि जिस जो कहता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, वो आत्मा। क्यों? इस तरह से उसको समझाए और धीरे धीरे वहां से उठाकर कि भले ये कहता है स्त्री पुत्रादि को अपना, लेकिन वास्तव में ये आत्मा नहीं है, ये भले ये शरीर में रहता है ये आत्मा, पर ये शरीर आत्मा नहीं है, भले ही आत्मा में राग देश मोह के विकारी परिणाम हैं, पर राग देश मोह के विकारी परिणाम आत्मा नहीं है। आत्मा में यद्यपि अनंत गुण हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन आत्मा अनंत नहीं है, अनंत गुणों का अखंड पिंड एक आत्मा है तेरा आत्मा, वो अनंत आत्मा है, वे तो पर है, उससे तेरे को क्या लेना देना है ना। असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड एक आत्मा, कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का बड़ापन बताना हो तो हम कह सकते हैं कि जिसमें 20-20 प्रांत हैं, जिसमें एक एक प्रांत में लाखों लोग रहते हैं, सैकड़ों जिले हैं, कह सकते हैं ना कि जिसमें 1 अरब जनता रहती है, तो ये हिंदुस्तान के बड़कपन को बताने के लिए ये बात कही जा रही है। लेकिन 20 प्रांतों का नाम हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान तो 20 प्रांतों में जो एक अखंडपना है उसका नाम हिंदुस्तान है। जब 20 दिखाएं तो हिंदुस्तान दिखाई नहीं देगा, जब अकेला हिंदुस्तान दिखे तो हिंदुस्तान दिखाई देगा। एक आदमी ने कहा था कि मैंने सारा भारत घूमा, सारे भारत में मुझे गुजराती मिले, मराठी मिले, पंजाबी मिले, मद्रासी मिले, लेकिन एक भी भारतीय नहीं मिला। समझने है क्या कहना चाहता है वो? जिससे पूछा कि आप कौन हैं, तो कहा मैं गुजराती हूं, मराठी हूं, मद्रासी हूं, पंजाबी हूं, बंगाली हूं। किसी ने एक ने नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं। क्या आपके यहां कितने विद्यार्थी हैं? करीब 50 तो मराठी होंगे, 40 राजस्थानी होंगे। क्यों? अच्छा अच्छा इतने ऐसे हैं, और हिंदुस्तानी है कोई? क्यों? बोलो। कोई नहीं कहता है कि हमारे यहां 165 विद्यार्थी हिंदुस्तानी है। कैसा दुर्भाग्य! इसलिए तो हिंदुस्तान हमारी समझ में नहीं आता है, हमें राजस्थान समझ में आता है, पाकिस्तान समझ में आता है, हैं? समझ में आया ना? लेकिन हिंदुस्तान समझ में नहीं आता है। ऐसे ही ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर असंख्य प्रदेश समझ में आते हैं, लेकिन अखंड प्रदेशों का अखंड पिंड, अनंत ज्ञानों का अखंड पिंड भगवान आत्मा समझ में नहीं आता। इस प्रकार 4 के व्यवहार नयों के माध्यम से इस आत्मा को कहां से निकाल के लाए? लोकाकाश में से। तो ये व्यवहार नए एकदम अनुपयोगी हैं, एकदम झूठे हैं, ऐसा भी मत समझ लेना। इनकी भी उपयोगिता है, और जिस बात को वो कहते हैं उस बात की मर्यादा में वे सत्य भी हैं, ख्याल में है ना? लेकिन उनकी मर्यादा उतनी ही है। देखो अपन गणित में कहते हैं ना, 1 के माने 11 और 11 में से 8 गए, 3 बचे, ऐसा लगाते कि नहीं लगाते? तो 1 के माने 11 ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची हो सकती है? क्यों भाई साहब? यदि 1 के माने 11 होता है तो मुझे आपसे 1 रुपया चाहिए, लाओ 11। कोई देने को तैयार है? नहीं। लेकिन ये बात भी हमको 21 में से 18 घटाने हों तो ये विधि है ना कि ऊपर में 21 में जो 1 है उसको 1 माने 11, उसमें से 8 गए तो 3 बची। तो वो बात सत्य है, लेकिन वो उस गणित पुरता सत्य है। गणित में तो सत्य है ना रमेश जी, कि नहीं? पूरे गणित में भी नहीं है। फिर कोई ये कहे कि 11 में से 18 घटाओ, कभी हाल घटाता हूं कि 1 के माने 11 और 11 में से नहीं चलेगा। तो 1 के माने 11 कब होता है? जब पीछे हासिल की गुंजाइश हो, तब 1 के माने 11 कर सकते हैं ना। ऐसे ही चाहे जहां व्यवहार को लगा दो वो बात सही नहीं है, बस उतना प्रयोजन पुरता कि जब 21 में से 18 घटाने हो तो वहां तुम 1 के माने 11 मान सकते हो, बस खत्म। वो सच्चा है इतनी मर्यादा में, इसके बाहर वो झूठा है, बस ऐसी बात है। इसे बिल्कुल झूठा ये बात नहीं है, कथनचित सत्य है और कथनचित झूठा है। जैन दर्शन स्यादवादी दर्शन है, वो सर्वथा स्वीकार नहीं करता है। वो व्यवहार नए अपने प्रयोजन की सिद्धि में समर्थ होने से सच्चा है, और उस प्रयोजन सिद्ध हो जाने के बाद में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए वो हे है, छोड़ देने लायक है, असत्य आता है। बहुत उदाहरण है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हमको नदी पार करनी है और नदी का पुल नहीं है, तो नाव में बैठ के जाना है, तो बोलो नाव में बैठे बिना नदी पार होते नहीं, और नाव में बैठे बैठे नदी पार होते नहीं। ऐसे ही व्यवहार नए के समझे बिना आत्मा समझ में आता नहीं, और व्यवहार में ही उलझे रहे तो आत्मा की प्राप्ति होती नहीं। तो क्या करें कि नदी में बैठना भी पड़ेगा, नाव में बैठना भी पड़ेगा, और नाव से उतरना भी पड़ेगा, तब उस पार होंगे। यदि नाव में बैठेंगे नहीं तो रहेंगे इस पार, यदि नाव में बैठे रहेंगे तो रहेंगे मझधार, उस पार नहीं होंगे। तो क्या करना पड़ेगा कि नाव में इस पार बैठना पड़ेगा और उस पार उतरना पड़ेगा, तब जाके पार होंगे। ऐसे ही व्यवहार नए से पहले समझना पड़ेगा और फिर व्यवहार नए को असत्यार्थ मान के उसे छोड़ना पड़ेगा, तो आत्मा की प्राप्ति होगी। समय सार का उद्देश्य तो आत्मा की प्राप्ति है ना। कोई आदमी ये कहे कि भाई साहब ये गड़बड़ हो जाएगी, कि आप कभी कहते हो उतरो, कभी कहते हो बैठो, तो हम कब बैठे हैं, कहां बैठे हैं, कहां उतरे हैं, कि हम समझा रहे हैं ना कि इस पार बैठो और उस पार उतरो, कि नहीं नहीं दो बात एक साथ मत समझाओ, हमारी बुद्धि जरा स्थूल है, कहीं हम भूल गए और जहां नहीं उतरना है वहां उतर गए, मझधार में उतर गए तो क्या होगा। इसलिए तुम ऐसा करो कि जब बैठना है तो अकेले बैठना ही बैठना बोलो, कि नाव में बैठने से पार होते हैं, नाव में बैठने से पार होते हैं, उतरने की बातें ही नहीं करो। जब हम उस पार पहुंच जाएं और नाव किनारे पर लग जाए तब उतरने की बात करना, क्योंकि पहले उतरने की बात करोगे और कहीं हम बीच में उतर गए तो बहुत चक्कर हो जाएगा, समझे ना। इसलिए तुम उतरने की बात बात में यहां नहीं करो कि देख भाई हम तेरे नौकर हैं तो तेरे साथ चलेंगे, तुझे नदी से पार होने का रास्ता यदि समझना है तो अभी यही समझ ले पूरा, और अच्छी तरह याद भी रखना, यदि तू मझधार में उतर गया तो हम जिम्मेवार नहीं है, बह के समुद्र में पहुंच जाएगा। इतनी सावधानी तेरी जिम्मेवारी है कि कहां बैठना और कहां उतरना पहले ही समझ ले। ऐसे ही कोई कहे कि पहले तो तुम व्यवहार में कोई सत्यार्थ कहो, उसे असत्यार्थ कहो ही मत कहो छोड़ने की बात, क्योंकि हम निश्चय तक नहीं पहुंचे, निश्चय के किनारे पर, और बीच में ही व्यवहार छोड़ देंगे तो संसार समुद्र में भटक जाएंगे, बह जाएंगे। इसलिए हमें बाद में बताना तो ऐसा नहीं चलेगा। देशना लब्धि तो एक साथ ही पूरी होती है, तुझे पहले ही सब बात समझनी पड़ेगी और उसे याद रखना पड़ेगा, और अत्यंत सावधानी पूर्वक जहां व्यवहार नय की उपयोगिता है वहां व्यवहार नय का उपयोग करना पड़ेगा, और जहां उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए वहां उसे छोड़ देना। एक नाव की बात होती तो हम तुम्हारे साथ चले भी चलते भाई साहब, अभी आपको यहां से बंबई जाना है तो यहां बीच में नदी पड़ती है, तो फिर नाव में से उतरना, फिर तांगे में बैठना, फिर रेलवे स्टेशन जाना, फिर वहां रेल में बैठना, फिर वो रेल में तुम्हारा स्टेशन आ जाए बंबई का, तब वहां उतरना, बीच में मत उतर जाना, नहीं तो हम जिम्मेवार नहीं है क्यों। फिर वहां टैक्सी में बैठना, फिर अपने गांव के कमरे जहां जाना वहां उतरना, कि तुमने बहुत बैठना उतरना बैठना उतरना बैठना उतरना कह दिया, हम गड़बड़ा जाएंगे, तो फिर हम तुम्हारे साथ बंबई तक चलें। नदी के उस पार जाने की बात होती तो सोच भी लेते, ऐसे यहां कई व्यवहार नए हैं। क्यों? पहले उपचरित सद्भूत व्यवहार नए की नाव में बैठना, सद्भूत व्यवहार अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नाव का किनारा आ जाए तो उससे उतर जाना, फिर तो उस दूसरी नाव में बैठना, फिर तो उसका किनारा आ जाए तो उतर जाना, फिर तो सद्भूत व्यवहार नाव की उपचरित सद्भूत नाव की नाव में बैठना तो उससे उतर जाना, फिर तो तीसरे चौथे व्यवहार नाव की नाव में बैठना, फिर तो उससे उतर के निश्चय में चली जाए। तो बहुत स्टेप है भाई साहब, कि यही तो हम आपसे कहते हैं कि बहुत स्टेप है। यदि हम कहीं भूल गए तो जो तुम्हारी समस्या है वही समस्या हमारी है, कि एक दो होते तो हम तुम्हारे साथ चलते, हम तुम्हारे साथ कहां तक जाएंगे? क्यों? आखिरकार उपाय यही है कि आप लिख लो, समझ लो, डायरी में नोट कर लो और तुम्हें ही अपना रास्ता पार करना होगा। अपनी मदद आप करो तो पार होगे, दूसरे के भरोसे काम चलेगा नहीं। दूसरा इतना कम कर रहा है कि तुम्हें समझा रहा है। ऐसे ही सारे व्यवहारों का स्वरूप आपको बहुत बारीकी से स्वयं समझना पड़ेगा और उनकी जो उपयोगिता है उसका उपयोग करना पड़ेगा, और जहां उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाए वहां उसको छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें भगवान आत्मा की प्राप्ति होगी। एक दफे आप अंदर से दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे ये समझना है तो आप समझ लेंगे, क्योंकि जिनवाणी में भगवान ने कहा है, समय सार में ही कहा है कि प्रत्येक सैनी पंचेंद्रिय में ये मुक्ति का मार्ग अथवा भगवान आत्मा को समझने की पूरी पूरी ताकत है, वो समझ सकता है। क्या ख्याल में है? इतनी बुद्धि हमारे पास है क्या? एक चिड़िया के पास जितनी बुद्धि है ना, आत्मा को समझने के लिए सिर्फ उतनी बुद्धि चाहिए, क्योंकि चिड़िया को भी सम्मदर्शन होता है कि नहीं होता है? सम्मदर्शन चारों गतियों में होता है। इसलिए ऐसा कहकर कि हम में बुद्धि नहीं है, हम में बुद्धि नहीं है, अरे भाई साहब वो चिड़िया तुम्हारे इतने व्यवहार नहीं समझती होगी क्यों? एक भाई ने मेरे से पूछा, क्यों जी तुम्हारा ये नए चक्र पड़े बिना सम्मदर्शन नहीं होगा, है ना? इनका हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, तो ठीक है ना। फिर मैंने कहा, पूछा कि तुम्हारे समय सार के पढ़े बिना सम्मदर्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो कि नहीं साहब, वो तो पढ़े बिना तो नहीं होगा। तो क्यों? कि नए चक्र को पढ़े बिना, जैसे चिड़िया को सम्मदर्शन हो गया क्योंकि उसने नए चक्र नहीं पढ़ा था, तो उस चिड़िया ने समय सार भी नहीं पढ़ा था और उसे भी हो गया क्या? लेकिन इतनी बात नक्की है, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि जो समय सार की विषयभूत वस्तु है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसे ये नयों के माध्यम से खुद समय सार ने समझाया है, समय सार में समझाया है, वो वस्तु जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। इसलिए भाई हम आत्मा का अनुभव करना है तो इन नयों के समझने से अपने उपयोग को हटाओ मत, थोड़ी मेहनत करो, 3 दिन की मेहनत से ये नए तुम्हारी समझ में आ सकते हैं और सारी जिंदगी का रास्ता साफ हो सकता है। तो समय सार की विषयभूत वस्तु तो नयातीत है, लेकिन वो नयों के माध्यम से समझी जाती है, उसे हम समझकर और आत्मा की प्राप्ति करें। इस पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूं, बाकी बात कल।
आगे सुदावर साए जिन वाणी, शांति सुदावर साए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूरा पर सवे दोष रहित आप क्रिया से सुन सो जय। आगम कहलाए दिन वाणी, शांति सुदावर ताए दिन वाणी, परमागम भाग्यों को अरे पर मुक्ति बधु के मुख कादर पर भव सागर त्रिताए दिन वाणी, शांति सुदावर ताए दिन वाणी, राज रूप अंगारों द्वारा मागेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुदावर ताए दिन वाणी, सत तत का ज्ञान कराए अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिन वाणी, शांति सुदावर ताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी।